الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
صلى الله
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد وعلى محمد. رمضان کے بعد سے کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ ماہ کے رمضان خدا کی ضیافت کا مہینہ ہے. ضیافت یعنی وہ جو ہے معمولی دعوت ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے. میزبان خود خدا تعالیٰ اور وہ مہمانوں کو ان کے ارادے کے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ جو مہمان جتنا زیادہ تیاری سے آئے وہ اس ضیافت سے مستفید ہو سکے گا. یوں احساس ہوتا ہے جیسے اسلامی نظام کے اندر ماہ بارک رمضان کی تیاری ماہ رجب سے شروع ہو جاتی ہے. ماہ رجب سے وہ عبادات شروع ہو جاتی ہیں جن کا کام انسانوں کو ماہ مبارک رمضان کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے. لہٰذا اس سال تو ظاہر ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی ساتویں تاریخ ہے، لیکن اگلے سال کے لیے آپ اور میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم ماہ رجب سے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیں، رجب کے مہینے سے تیار کریں. ایک تعبیر کے مطابق رجب ولایت کا مہینہ ہے، امیر المومنین کی ولایت کا مہینہ ہے. کچھ لوگ صرف بھوک و پیاس حاصل کریں گے روایت کے مطابق، کچھ لوگ بھوک و پیاس سے بڑھ کر معنویت کو حاصل کریں گے. آپ کو اور مجھے دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک رمضان سے کیا چاہیے. جتنا زیادہ آپ عبادت کے فلسفے کی طرف جائیں گے جو آپ حاصل کریں گے اس کا معیار بڑھتا چلا جائے گا. کل ابتدائی چیزیں آپ سنی تھیں، آپ سے عرض ہوا تھا کہ تسبیح کو توجہ سے پڑھنا شروع کر دیجیے. آپ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن سے نکل گیا ہوگا کہ کل کیا ہو رہا ہے. مجھے یہ معمول ہوتا ہے کہ ایک نصیحت، ایک باعث، ایک تذکرہ ہوتا ہے، کچھ لوگ عمل کرتے ہیں، کچھ لوگ عمل نہیں کرتے. بہت طبیعی سی بات ہے. ہم لوگ اپنے طور پر سوچتے ہیں کہ اگر 10% لوگ بھی عمل کر لیں تو بڑی بات ہے. انبیاء کے اتنے زیادہ کہنے کے بعد آج دنیا میں 20% سے زیادہ لوگ مسلمان نہیں ہیں. اگر ہم جیسے نااہل لوگ کہیں 10% بھی عمل کر لیں بہت بڑی بات ہو گئی. تو زیادہ توقع نہیں ہے کہ لوگ بہت زیادہ عمل کریں گے، لیکن بہرحال عمل کرنے والے لوگ عمل کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ اگر تذکرہ دہرا دیا جائے تو شاید اس کا اثر پڑھنا شروع ہو جاتا ہے. میں ایک بار پھر یاد دلاتا ہوں کہ خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ تسبیح کو اس طریقے سے پڑھنا شروع کر دیجئے، اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو اثر حاصل ہوگا. اور جن لوگوں نے شاید پڑھا ہو تو ان کے پاس تین نمازوں کے بعد جو آپ نے مختلف اوقات میں پڑھی، تین مختلف اوقات میں پانچ فجر نمازوں کے بعد اگر آپ نے پانچ دفعہ تسبیح کو اس طرح سے پڑھا ہو تو کچھ نہ کچھ اثر آپ کو نظر آیا ہوگا انشاءاللہ. نہیں آیا تو آپ دوبارہ کوشش کر لیجیے. کل آج بات ہے استغفار کرنے، استغفار کرنا خدا متعالیٰ کو حضور سے دل کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. استغفار کا جو طریقہ کار تھا وہ بھی اپنی خدمت میں عرض ہوا تھا، یہ میں دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ اگر خدا نہ کرے آپ نے کل اس کی کوئی کوشش نہیں کی، آج کم از کم ضرور کوشش کر لیجیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنا کچھ نہ ہمارا سننے اور سنانے میں علم حاصل کر رہے ہیں، البتہ میں اس کو علم کہتے ہوئے ڈر اس لے رہا ہوں کہ پتہ نہیں اس پائے پہ شر نہ پہنچے کہ ہم اس کو علم تعبیر کر پائیں، لیکن بہرحال اگر اس کو ہم علم تعبیر کر سکیں یہ سب قیامت کے دن سوال بنے گا، یہ سب سوال بن جائے گا. انسان کا علم بہت قیمتی چیز ہے، انسان کا علم اگر عمل میں آئے تو جزا بنے گا ورنہ سوال ہے، اور جہالت اس سوال سے بڑھ کر ہے. جہالت اور بڑا سوال ہے، اصل کو یہ کہہ تھی کہ میں علم حاصل نہیں کروں گا تاکہ سوال سے بچ جاؤں، جہالت خود بہت بڑا سوال ہے. تو تمہیں خدا تعالیٰ نے عقل دی تھی، علم کی فضیلت بیان کر دی تھی، تم نے علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ جب علم حاصل کرتا ہے تو ایک سوال آ جاتا ہے وہ ایک اس علم پہ عمل کیوں نہیں کیا، اور جب عمل ہو جاتا ہے تب وہ چیزیں جو کردار کے اوپر نقش چھوڑ دیتی ہیں. جو کچھ میں اور آپ کر رہے ہیں اس سے میرے اور آپ کے کردار کے اوپر کچھ چیزیں نقش بن رہی ہیں. یہ جو ابھی آپ یہاں پہ تشریف کرنا ہے اور ہمیں اور آپ کو اس عادت مل رہی کہ ہم خدا تعالیٰ کے حضور اس بندگی کو انجام دے رہے ہیں، اس سے ہمارے اور آپ کی روح کے اوپر کچھ چیزیں نقش ہو رہی ہیں. قرآن کریم فرماتا ہے کہ المجرمون فی سیما، قیامت کے دن مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، مومنین بھی چہروں سے پہچان لیے جائیں گے. اور یہ جو مثلاً ہمارے پاس ہے کہ کچھ قیامت کے دن چہرے نورانی ہوں گے، کچھ وہ عمل کی نورانیاں ہیں. قیامت کے دن ہر چیز جو میں اور آپ یہاں پہ انجام دے رہے ہیں ہمارے اور آپ کے چہرے کے اوپر ظاہر ہو رہی ہوگی، تاریکی کی صورت میں، نورانی کی صورت میں، اچھے اور برے اعمال کے. تو جو کچھ میں اور آپ کر رہے ہیں یہ سب ظاہر ہونا ہے، یہ جو کچھ میں اور آپ مانی مار کے رمضان کے اندر کریں گے یہ سب بھی ظاہر ہوگا. اور اس روایت میں موجود ہے کہ انسان قیامت کے دن حسرت کرے گا کہ اتنی شبیں گزری، میں نے ان شبوں میں عبادت کیوں نہیں کی، کیا لے کر کیا کھویا ہے. آپ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ کبھی بازار جاتے ہیں آپ نے فرض کیجئے 1000 روپے کی کوئی چیز خریدی گھر کے، آپ کو پتہ چلے اس کی قیمت 100 روپے تھی، تو آپ گھاٹے کا احساس کرتے ہیں کیا 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 دیا. نیند لے کر عبادت دی ہے بڑا گھاٹا کیا، صرف نیند دی بس اور کچھ نہیں. اگر اس میں قیمتیں نہ ہو رہی ہوں، تہمتیں نہ لگ رہی ہوں تو اور برا ہو گیا. پھر کہ رات کو جاگے تہمتیں کی، قیمتیں کی، برائی بھی لے لی سر پہ، اور کیا کیا ہو سکتا تھا، یہ ہو سکتا تھا کہ ایسا عبادت میں تبدیل ہو جاتا، وہ سب ضائع ہو گیا، اور کیا ملا ہے، خدا نہ کرے گناہ اور اچھی حالت میں کچھ بھی نہیں. نہیں، یہ ہمیں سوچ لینا چاہیے ہمیں ماہ بار کے رمضان کو کیسے گزارنا ہے، یہ آپ اور میں بہت اچھی طرح سوچ رہے ہیں. تو کل آپ کی خدمت میں آج کیا استغفار کرنے، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، جو کچھ ہم آپ سن رہے ہیں، ان سب کے اوپر سوال بنے گا قیامت کے دن. یہ سب روایات جو آپ نے میں نے اپنی زندگی میں سنی ہیں، پڑھی ہیں، یہ سب سوال بن جائیں گے، سب کے سب سوال بنیں گے. یہ روایت پتہ چل گئی تھی، عمل کیوں نہیں کیا. قرآن کریم یہودیوں کے بارے میں کہتا ہے یہ لوگ ایسے ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں، وہ ہوں یا نہ ہوں، اور سب جانتے تھے. اس کا مطلب ہے دو گروہ ہیں انسانوں کے، ایک وہ جو نہیں جانتے ان کا عذاب کم ہے، ایک وہ جو جانتے ہیں، ہم اور آپ اہل بیت کو جانتے ہیں، ہم اور آپ اس خاندان کے معتقد ہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں ان کے پاس علوم کے خزانے ہیں، کیوں نہیں حاصل کیے. جہالت بہت بڑا سوال ہے، جہالت بہت بڑا سوال ہے. اگر ہم لوگ نعوذ باللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علوم سے غافل رہ جائیں، جاہل رہ جائیں، یہ سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے. ان علوم کی خاطر انہوں نے خون بہایا تھا، ان علوم کی خاطر ان کے پاکیزہ ترین اصحاب نے خون بہایا تھا، وہ علوم حاصل کیوں نہیں کیے. ابھی ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہم سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے واقعا اہل بیت اطہار کی روایات سے کچھ حاصل کیا. کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیے. عثمان والے کے رمضان میں ایک اور کام کر لیجیے، کل میں نے اپنی خدمت میں دو چیزیں حاصل کی تھیں، इबादत के हवाले से। आज पहली चीज़ इल्म के हवाले से अर्ज़ करता हूँ ये कि इंशाअल्लाह हमारी बेअसर ज़बान में कोई तासीर पड़ जाए दुरूद भेजें मुहम्मद वाले मुहम्मद कोई किताब इंतखाब कर लीजिए माह के रमज़ान के लिए किसी किताब का इंतखाब कर लीजिए हर रोज़ एक सफ़ा ज़रूर पढ़ लें क्यों करें इस्लाम ने तीन फजीलतें इल्म तक्वा और जिहाद फी सबीलिल्लाह ये इस्लाम ने तीन फजीलतें आप किसी फजीलत से महरूम ना रहें आप अल्हम्दुलिल्लाह शहरुल्लाह के अंदर हैं अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी के महीने के अंदर हैं इल्म से क्यों महरूम रहें इल्म भी हासिल करें कोई किताब ले लीजिए उलूम अहले बैत अतःअलैहिस्सलाम के ऊपर मुश्तमिल जिसमें अहले बैत की तालीमात से इस्तेफादा किया हो अपने आप को महरूम ना छोड़ें दुनिया कमा रही हो आपने ना कमाया हो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कुछ लोग मेराज पे पहुंच रहे हैं हम ना पहुंच सके ये बहुत बड़ा मसला है ये बहुत बड़ा मसला है हम इसको सादा ना समझें तो कुछ ना कुछ हासिल करते रहिए माहवार के रमज़ान के अंदर अर्ज़ आपकी खिदमत में हर रोज़ के लिए कुछ काम सोच दीजिए मसलन तस्बीह मुस्तकिल काम है बाद अवकात ऐसा होता है बोलने वाले बोल के चले जाते हैं लोग वहीं रह जाते हैं जहाँ थे चंद दिन के लिए कुछ तब्दीली आती है बाद मामला ख़त्म हो जाता है हमारे साथ भी ऐसे होता था मुझे याद है हम किसी बहुत बड़े उस्ताद की किसी दर्स में जाते थे तो उस दर्स से निकलते वक्त दिल पर बहुत शदीद असर होता था उसका और दिल चाहता था बस इस दर्स को दसवें दफ़ा सुनेंगे इसमें डूब जाएंगे किसी तरीके से कुछ अर्से के बाद असर कम होना शुरू हो जाता था कम होते होते फिर दोबारा एहसास होता था कि उनके दर से दोबारा जाना चाहिए अच्छा इसका हल क्या निकालें फ़र्ज़ कीजिए आप माहवार के रमज़ान के अंदर इन दुरुस्त को समाप्त फरमाएंगे उसके बाद मौलाना हसन ज़फ़र नक़वी साहब तशरीफ़ लाएंगे उनके आप मजारिस दुरुस्त तशरीफ़ ले जाएंगे उसके बाद फिर ये सिलसिला मुनक़ते हो जाएगा उसके बाद के लिए क्या करें उसके लिए कुछ ऐसे आमाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ जिनको आप मुस्तक़िल अंजाम देते रहें मसलन तस्बीह दिन में आप अगर हर वाजिब नमाज की बात पढ़ेंगे तो 5 दफ़ा हो जाएगी इससे आपका नफ्स जिंदा रहेगा आप रिचार्ज होते रहेंगे अपनी इस रिचार्जिंग मानवियत के अंदर इसी तरह अर्ज़ किया हर रोज़ इस्तग़फ़ार करें हर रोज़ का काम इस वजह से ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है अलबत्त रिवायत के अंदर है कि तुम हर रोज़ करो कम करो लेकिन मुस्तकिल करो छोड़ो नहीं अयदुल्ला जौहरी अमली ने एक दफ़ा एक जगह साबित किया था कि अमल छोड़ देना ना करने से और ज़्यादा बुरा बन जाता है बस आपने कोई बहुत अच्छा अमल कन्विंस होकर शुरू किया था फिर बीच में छोड़ दिया ये बहुत बुरा है बेहतर था कि ना शुरू करते सोच समझ के शुरू करते सोच समझ के शुरू करते अगर को तो कोई बहाना ना बनाए इसके लिए कि कहे कि मैं कुछ शुरू ही नहीं करूँगा कि कहीं ऐसा ना हो ख़त्म ना कर दूँगा अल्लाह के दीन में कोई बहाना नहीं चलेगा काम करना पड़ेगा तो अर्ज़ हुआ कि आप तस्बीह की तरफ तवज्जो दीजिए इस्तग़फ़ार करना शुरू कर दीजिए इस माहवार के रमज़ान के अंदर एक किताब ले लीजिए और उस किताब के जरिए अपने इल्म को बढ़ाएं जहाद फी सबीलिल्लाह के लिए क्या करें एक सादा सा काम कर लीजिए जहाँ देख रहे हैं जुल्म हो रहा है वहाँ कहें ये जुल्म हो रहा है बस यहाँ से शुरू करें अगर आपने देखा इसने उसके ऊपर जुल्म किया कम अज कम इतना कह तो दें जुल्म हुआ इतना तो कह सकते हैं कम से कम यहाँ से शुरू करें मसलन आपने देखा फलस्तीनियों पर जुल्म हुआ मुंह से कहें जुल्म हुआ कम से कम जालिम को जालिम तो क्या है आपने देखा मसलन कश्मीरियों पर जुल्म हुआ तो बोले तो सही जुल्म हुआ बोलने में क्या जा रहा है हाँ मुझे पता है बोलने में भी बात औकात का कुछ जाता है लेकिन कम से कम कितनी कुर्बानी तो दे दें जिहाद फी सबीलिल्लाह की शहादत से क्यों अपने आप को महरूम रखें जिहाद की कम अज़ कम हद क्या है जबान से तो कह दें जबान से तो कह आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ेगी खुदा ताला इंशाअल्लाह मुझे और आपको उस जगह पहुँचा देगा कि हम दीन के मुजाहिद बन जाएंगे इंशाअल्लाह माह मुबारक रमज़ान की दुआ में से एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मजालिस के लिए हमने उनवान अपने जहन में सोचा था कि हम माह मुबारक रमज़ान और कामयाब ज़िंदगी के आदाब इसको उनवान अपने जहन में रखेंगे कामयाब ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है इसका माह मुबारक रमज़ान में किरदार क्या है बहुत बड़ा किरदार दुआओं का है, जो बदकिस्मती से हम बगैर सोचे समझे पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि दुआएं हैं क्या। अच्छा है कि आज मैं दुआओं के हवाले से चंद जुमले अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में। दुआएं वो आइडियल्स हैं जो अहले बैत अतहार ने हमारे लिए बयान किए हुए, दुआओं के जरिए आइडियल्स बयान हुए। मसलन माह मुबारक शाबान में एक मुनाजात थी जिसको मुनाजात शाबानिया ताबीर किया जाता है। तमाम ओरफा, अगर मैं तमाम को बग़ैर मुबालगे सोचूं कि जितने भी ओरफा होंगे अहले बैत से वाबस्ता, सब मुनाजात शाबानिया पढ़ते थे, तो मैं अर्ज करूँ कोई मुबालगा नहीं किया। यकीन से कह सकते हैं तमाम ओरफा मुनाजात शाबानिया पढ़ते थे। अब्दुल मिश्किनी ने भी मुझे उनकी किताब थी उसके अंदर ये बात लिखी थी कि कोई ऐसा बड़ा आरिफ नहीं बना होगा आरिफ जिसने मुनाजात शाबानिया के बगैर ज़िंदगी गुजारी नहीं होगा। इस मुनाजात शाबानिया के अंदर एक जुमला है, इलाही हबनी कमाल इन्क़िता इलैक, ऐ खुदा मुझे अपने से मुनक़िते होने की सआदत दे दे, यानी मैं टूट जाऊँ सिर्फ तुझसे जुड़ जाऊँ बाकी सबसे कट जाऊँ। हबनी कमाल इन्क़िता इलैक, सबसे कट जाऊँ तुझसे जुड़ जाऊँ इसकी सआदत दे दे। और इसी को सूरह मुज़म्मिल के अंदर इरशाद सुना खुदा मुताल वतबत्तल इलैहि तब्तीला, वतबत्तल इलैहि तब्तीला, सबसे कट जाओ सिर्फ खुदा से जुड़ जाओ। ये खुदा मुताल ने आइडियल दे दिया। अभी जो महाभारत रमज़ान की दुआएं हैं ये बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं, काश हम लोग इनको उर्दू में पढ़ रहे होते तो हमें इनसे बहुत कुछ नसीब हो रहा होता। बरसवील तस्करा, इससे पीछे भी एक बात जहन में आती है, वो अर्ज़ कर दूँ नफीस बात है। एक दफ़ा इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही थी, जो बीवियों खुतबा इरशाद फरमाए दरबार के अंदर या मदीने में अपने घर से बीवी ने खुतबा इरशाद फरमाया, दो खुतबे मशहूर हैं बीवी के, या अमर अमीर मोमिनीन ने मसलन खुतबा नहजुल्बलागा मौजूद हैं, खुतबा शाशकिया वगैरह दोनों की ज़वात अक़दस पर दुरूद भेजे मोहम्मद वाले सनदियत क्या है, तो किसी ने खुतबे शख्शिया को मंसूब किया सईद रज़ी से, सईद रज़ी ने जो खुतबे शख्शिया का, तो सामने वाले ने जवाब दिया कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि मसलन 200 साल हिजरा में अहले बैत के मानने वाले अपने बच्चों को जो पहली चीज़ें सिखाते थे वो ये खुतबे होते थे। आजकल हम लोग अपने बच्चों को पहली चीज़ें क्या सिखाते हैं, पोएम्स। उस ज़माने में वो लोग को जो पहली चीज़ सिखाते थे वो अमीरुल मोमिनीन के खुतबे होते थे। आप सोचिए बच्चे क्या बनते होंगे, उन खुतबों को सीख कर ज़बान सीखते थे वो लोग। तो मसलन किसी ने पूछा भाई तुम लोग हाशमी लोग सादात लोग तुम लोग की आर्मी इतनी फसीह क्यों है, मुख्तलिफ हैं सबसे, तो उन्होंने कहा हम बच्चे को पहली चीज़ अली का खुतबा सिखाते हैं, ज़बान वहीं से सीखता है, किसी शायर से नहीं सीखते हम, अमीरुल मोमिनीन से सीखते हैं। इसलिए हमारी अरबी मुख्तलिफ है, हम एक और लहजे में गुफ्तगू करते हैं। और ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता जब मैं भी वापस आप फोन में अर्ज़ कर रहा था, अगर आप बस इतना करते हैं कि चंद दिनों तक आपका इनपुट आपका अपने नफ्स के साथ रबता सिर्फ नहजुल बलागा रहे, कोई किताब ना पढ़ें, टेलीविजन ना देखें, अखबार ना पढ़ें, चंद दिन तक सिर्फ नहजुल बलागा पढ़ें, आप देखेंगे आपकी फिक्र और ज़बान पर नहजुल बलागा का प्रिंट आना शुरू हो जाएगा, छाप आना शुरू हो जाएगी, आप एहसास करेंगे कि आपकी लॉजिक तब्दील हो रही है। ये वो बच्चों के साथ कर लिया करते थे, बड़ा नफीस काम था। इन दुआओं के अंदर अजीब चीज़ है, आप इन दुआओं को पढ़ने और इन दुआओं को सीखने की कोशिश करें तो इन दुआओं में आइडियल्स हैं, आइडियल्स बयान किए। मिसाल के तौर पर दुआएँ जो माह रमज़ान की दुआएँ दुआएँ इफ्तिताह में एक जगह पर रहेंगी, ऐ खुदा ने मुझे ऐसा कर दे कि मैं तेरे दीन की नुसरत का सबब बन जाऊँ, मैं तेरे दीन की नुसरत का सबब बन जाऊँ। एक दफ़ा क्या होता है, मैं दीन से कहता हूँ ऐ दीन मुझे खुम्स दे, ऐ दीन मुझे ज़कात दे, ऐ दीन मुझे खैरात दे, ये लेने वाला हाथ है। ये दुआ ये नहीं कह रही खुदाया मुझे दीन से ज़कात दिलवा दे, मुझे दीन से खुम्स दिलवा दे, मुझे दीन से सदाकात दिलवा दे, नहीं कह रही, कह रही खुदाया मुझे ऐसा कर दे तेरे दीन को नासिर चाहिए, मैं नुसरत करूँ दीन की, बुलंद मरतबा चाहिए। हम लोग छोटे मरतबों के ऊपर हैं, यूं ही अर्ज कर रहा हूँ, कोई बुरा ना माने इस बात का। हम लोग ये सोचते रहते हैं ईरान हमारे लिए ये क्यों नहीं करता, फलानी हमारे लिए ये क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं सोचते हम अल्लाह के दीन के लिए क्या करें, ऊपर से हम क्यों नहीं सोचते, हमेशा ये सोचते रहते हैं वो हमारे लिए ये करे, वो हमारे लिए ये करे, आलिम वहां से आ जाए, पैसा वहां से आ जाए, दौलत वहां से आ जाए, प्रोटेक्शन वहां से आ जाए, क्यों मैं और आप कब दीन के लिए कुछ करेंगे, फिर खुदा मुझे ऐसा बना दे मैं तेरे दीन की नुसरत करूं, तुझे फौजी चाहिए मैं फौजी बनूं, तुझे आलिम चाहिए मैं आलिम बनूं, तुझे माल चाहिए मैं माल दूं, जो तेरे दीन की नुसरत के लिए चाहिए वो मैं दूं। ये दुआएं हमें सिखा रही हैं, लेकिन हम क्यों नहीं सीख पा रहे, बदकिस्मती से दुआओं को तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ते, तो यूं ही पढ़ते हैं समझ में नहीं आते, आप उनको तर्जुमे के साथ पढ़ लीजिए, हासिल करें। इसमें एक पॉइंट को और इजाफा करता हूँ और उसको मजीद आगे बढ़ाते हैं, दुरूद भेजेगा मोहम्मद से और बेहतर इस्तेफादा क्या हो सकता है जिससे जिंदगी बेहतर हो जाए, कामयाब जिंदगी की तरफ जाए। ये किसी और मौके पर हल करने की कोशिश करने की तफसील से कामयाब जिंदगी कहते किसे हैं, और सिर्फ निशानी के तौर पर अर्ज कर रहा हूँ, आप अपने आप से सवाल कीजिएगा। मसलन फर्ज फरमाइए आप बाहर निकले बाजार में, एक आदमी खजूर का टोकरा सर पर रखे हुए खजूर बेच रहा है, ये आपके नज़दीक कामयाब इंसान है, नहीं है ना, फिर मिसल तमाम क्यों कामयाब है, वो भी तो खजूर बेचता था, मिसल तमाम कामयाब है। कितने ही मैं अहले बैत के रावियों को नाम से पहचानता हूँ कि जो बज़ाज़ थे कपड़ा बेचते थे कामयाब थे, खजूर बेचने वाला कामयाब है, किसान कामयाब है, कपड़े बेचने वाला कामयाब है। मैं जानता हूँ रिवायात किताबों के अंदर मौजूद है, साबित हुआ हुआ मोजी था वाक़ इमाम से मुलाकात करता था, मोजी था वाक़ इमाम से मुलाकात करता था। एक साहब का वाक़ मौजूद है, वो नजफ़ से वापस आ रहे थे, अपने इलाके में वापस आने लगे तो नजफ़ की बहुत बड़ी मर्ज तकलीफ थी, उनसे कहा आप मेरे लिए कुछ लिख दीजिए ताकि जब मैं इलाके के लोगों को जाऊँ तो उनके पास दिखाने के लिए कुछ हो। तो उन्होंने उनके लिए लिख के दिया कि आलिम है, फाजिल है, फ़लाँ है, फ़लाँ है, और कहा कि लोग भेजा। उसके अंदर मुस्तैद नहीं था, नहीं लिखा था मुस्तैद है। अच्छा, इनको पता था कि ये बहुत मुश्किल से लिखते हैं मुस्तैद है, उनके दर से इस हाथ में बहुत अरसे से जा रहे थे, मुस्तैद नहीं लिखा, यानी अगर मैं मुस्तैद लिख दूँ तो मैं दर से इस हाथ में इतने अरसे से जा रहा हूँ, मुस्तैद तो होऊंगा, ये लिखते नहीं हैं। और लोगों के साथ मसला ये कि वो जब तक मुस्तैद लिखा नहीं देखेंगे उनको चैन नहीं आएगा, चलो मुस्तैद लिख दिया आपसे, मुस्तैद लगा दिया उसने, अपने इलाके वापस आए, लोगों को दिखाया कि भाई इतने अरसे दरसे इश्तेहार में था, ये काम किए हैं, और ये उस्ताद का ताइद नामा। लोगों ने कहा भाई ये तो मुस्तैद लिखा है, मुस्तैद लिखा है, आज जुम्मे की नमाज आप पढ़ाएंगे। जो जुम्मे की नमाज पढ़ा था उसने कहा नहीं मैं तो पढ़ा ही नहीं सकता, आप मुस्तैद हैं, आपका हक है आप पढ़ाएं, पूरा शहर उनके सामने सरेंडर, नहीं तो आपका हक है। अब ये कह रहे नहीं इतना ऊपर नहीं जाना चाहता था, थोड़ा नीचे रखो, मैं कह नहीं आप तो आपका हक है आप जाएं ऊपर ही जाएं, सब ऊपर चढ़ा दिया उनको। अब वो काफ़ी अरसे तक करते रहे, पूरा शहर उनकी ताज़ीम करता था। एक दिन मस्जिद में कदरे जल्दी आने लगे, थोड़ा जल्दी आए, जल्दी आए, मोची के सामने से गुजर रहे थे, उसने कहा खूब धोखे बाद आदमी है, अरे मोची की ये छोड़ा मुझे धोखे बाद क्या है। उस वक्त तो सब्र कर लिया, फिर अगले दिन फिर आया, उसने देखा क्या खूब तूने उल्लू बनाया, नजीक क्या कहने दिमाग सही है, आलिम हूँ मैं तोहीन कर रहा है, कहना मुस्तैद हो। अब उनको समझ में आया कि ये बहुत उस्ताद आदमी है, समझ सो बहुत कुछ पता है। मजीद तफसील आते हैं इसके पीछे, मोची था, सब जानता था क्या हुआ। उसने कहा किसने कहा कि मेरे साथ इस तरह इहानत करूँ, कहना आका का हुक्म है, अब कुछ कहना है, खामोश हो गया, कहना सच गलती की मोची ये सब हो सकता है। ये लोग हम सही नहीं समझ रहे, अगर हम दीन को ये समझ रहे हैं कि इसके अंदर उन्मान से काम चलेगा, नहीं तब सही हो सकता है। अलबत्ता इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं कहना चाह रहा हूँ इल्म की हैसियत नहीं है, आलिम की हैसियत नहीं है, कोई जुमले से ये निकाले कि नहीं आलिम की हैसियत नहीं, मुश्तहिद की हैसियत नहीं, नहीं हैसियत है, झूठे की हैसियत नहीं है, आलिम की हैसियत है, आलिम की हैसियत है, कोई झूठ बोले उसकी हैसियत नहीं, चाहे आलिम हो चाहे जाहिल हो चाहे कुछ भी हो, झूठे की हैसियत नहीं। वरना नजब का मकाम है, नजब में पढ़ने वाले का मकाम है, इल्म का अपना मकाम है, तकवा परहेजगारी का मकाम है। तो कुछ कोशिश करें हम लोग किसी सफ में मुलहक हो जाएं, ऐसा ना हम लोगों का वक्त गुजरता रहे, एक जगह खड़े लेफ्ट राइट करते रहें और उससे बुरा ये हो कि पीछे भी जा रहे हैं, ये ना हो जाए। मुझे मेरे जहन में आता है बाद वक्त जो जो लोग नए नए दीन की तरफ आ रहे होते हैं, शुरू में बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन होती है उनके अंदर, जोश जज्बा बहुत ज़्यादा होता है, आहिस्ता आहिस्ता दीन के घाव बन जाते हैं, दीन के, अब मैं क्या इस गाहक लफ्ज का तर्जुमा करूँ आपकी खिदमत में, उस्ताद बन जाते हैं, दीन को भी धोखा देना शुरू कर देते हैं, दीन में से राह निकालना शुरू कर देते हैं, जो असली जिम्मेदारी है वो नहीं करनी, अपनी मर्जी से करना है, काम खराब हो जाता है। आप दीन में वैसे ही कर लें जो दीन ने कहा है, दीन ने क्या कहा है, पर झूठ मत बोलो, मत बोलो, दीन ने कहा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, मुनाफिकत मत दिखाओ, मत दिखाओ, आपका दीन आपको खुदा के नज़दीक लेके जाना चाहता है, सब चीज़ें अलामत बन जाती हैं। मसलन आप रुकू करते हैं, कुरान करीम फरमाता है यहूदियों से कहता है कि अकीमुस्सलात व आतुस ज़कात व रुकू मअ राकईन। अब देखिए मैं इसका तर्जुमा करता हूँ, कुरान करीम बाद वक़्त हम लोग को जगाने के लिए बहुत सादा सादा चीज़ें बयान फरमाता है, फरमाया अकीमुस्सलात नमाज कायम करो, आतुस ज़कात ज़कात अदा करो, व रुकू मअ राकईन रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अभी तो कहा था अकीमुस्सला, उसमें रुकू नहीं था,
क्या कहने,
अकीमुस्सला नमाज कायम करो, आतुस ज़कात ज़कात अदा करो, वरकऊ मअ राकईन रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। उस नमाज के अंदर रुकू तो था पहले से, ये कौन सा रुकू है, हम लोगों ने कुरान करीम पे गौर नहीं किया। अच्छा हम फौरन क्या जवाब देंगे, ये उसी के रुकू को दोबारा कहा है, रुकू का कहा तो सज्दे को क्यों नहीं कहा फिर, अगर कहा है रुकू करने वाले से रुकू तो सजदा करने वाले से सजदा करो, अगर बंदगी की अलामत लें तो सजदा तो ज़्यादा बड़ी बंदगी की अलामत है। रुकू का मतलब क्या होता है, सर झुकाओ, सर झुका दें, सर झुकाना क्या मतलब है, बदन झुकाना है या रूह झुकानी है, हाँ फरमाते हैं अपनी फिक्र अपनी अकल अपनी रूह सबको झुकाओ खुदा ने कहा के सामने, तस्लीम हो जाओ, रुकू करो। अब आप तसव्वुफ फरमाएं हम लोग रुकू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जगह जगह अपनी मर्जी चलाते हैं, उसके बाद हम रुकू भी कर रहे हैं, कहाँ रुकू किया, रुकू में रह गए, सजदा तो दूर की बात है, रुकू में ही रह गए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी चलेंगी। तो अब हम क्या करें, हम मेहनत करें, माह मुबारक रमज़ान है, खुदा ने दावत दे रहा है, अच्छा नहीं है कोई किसी को दावत दे और वो पहुँच जाए और उसकी बात पे लबैक ना कहे, ऐसा खुदा नहीं करता। मैं कभी इससे जितना सोचता हूँ, कभी कभी आते हैं लोग मुझसे कहते हैं ये मुश्किल हल कर दो, ये मुश्किल हल कर दो, तो अगर कोई एक दफ़ा घर आए और मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ वो चला जाए, दूसरी दफ़ा आए मैं नहीं हूँ वो चला जाए, तीसरी दफ़ा आए तो घर वाले भी कॉल करके कहते हैं कि भाई बंदा तीसरी दफ़ा आया है, आपने टाइम दिया या नहीं दिया, इसकी मुश्किल हल करें आप, तीसरी दफ़ा आया है। तो मैं सोचता हूँ हम खुदा के सामने दूसरी दफ़ा भी पहुँच जाए ना, बहुत है, खुदा करीम है, वापस नहीं भेजेगा, फौरन कबूल करेगा। दूसरी दफ़ा भी मैं कह रहा हूँ अपनी कमजोरी की वजह से, खुदा तो पहली दफ़ा में ही रद्द बैक कहता है, वो उसने कहा वापस भेजना है आपको, माह मुबारक रमज़ान में खुदा ने खुद बुलाया है, आप शैतान के धोखे से यहाँ नहीं आ सकते, मुतमाइन रही में और आप शैतान के धोखे से खुदा के सामने नहीं जा सकते, शैतान के धोखे से बाजार में जाएंगे, शैतान के धोखे से नाऊज़ुबिल्लाह सिनेमा में जा सकता है कोई, शैतान के धोखे से कोई टेलीविजन के सामने बैठ सकता है, शैतान के धोखे से अल्लाह की बंदगी के लिए नहीं आएगा, ये सिर्फ खुदा लेकर आएगा आपको यहाँ पर, आप यहाँ किस मतलब सिर्फ खुदा के लिए आए, अब जबकि यहाँ तक आए हैं यहीं पर रुकेंगे या आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, आप आपके खिदमत में छोटे छोटे आमाल में तवज्जो दें, आज इसको थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मैं हर रोज कोशिश ये करूँगा एक कदम बढ़ने की कोशिश करें, हम लोग एक कदम बढ़ने की कोशिश करें। और ये सिर्फ उस सूरत में हो सकता है जब घर जाके मैं भी अमल करूँ, आप भी अमल करें। अगर अमल नहीं किया मेरा भी वक्त ज़ाया होगा, आपका भी वक्त ज़ाया होगा। तो मैं आपसे वादा करता हूँ जो मैं आपसे कहूँगा वो खुद करूँगा। और आप इस तरह से कर लीजिए कि जो मैं आपकी खिदमत अर्ज कर रहा हूँ, अगर आपको सही लग रहा है आप भी बिना अमल के मत छोड़िएगा, आप भी अमल कीजिएगा। तस्बीह की बात अर्ज की थी, इस्तिग़फ़ार की बात अर्ज की थी, एक किताब का है, कोई किताब रखें पढ़ लें। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। कुरान करीम का पेशाब सुनाते हैं, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिल बनहर फी मक़अद सिद्दीक़ इंद मलीक मुख्तदर। फरमाते हैं मुत्तकीन कुछ वो हैं जो जन्नत में होते हैं, जन्नतों में होते हैं, वह नहर नहरों के पास होते हैं। कुछ मुत्तकीन हैं जो जन्नत में हैं, नहरों के पास हैं। फी मक़अद सिद्दीक़ इंद मलीक मुख्तदर, कुछ लोग बहुत पाकीज़ा जगह पर हैं खुद खुदावंद मुताल के साथ। जन्नत एक ही जैसे दर्जे की एक जगह है या जन्नत वो नाम है जिसमें बहुत सारे दर्जे हैं? मेरे ख्याल में सब मुतकिद हैं कि जन्नत को ऐसी जगह है जिसमें बहुत सारे दर्जा हैं, ये दर्जा वो दर्जा, उसमें कुछ नीचे हैं कुछ ऊपर हैं। अच्छा रोज़ा तो आपने भी रखा मैंने भी रखा, रोज़ा मिसाल के तौर पर हज़रत सलमान फारसी ने भी रखा, मुख्तलिफ कैसे हो गए? वाजिबात तो वही है ना, वही वाजिब जो आपके मम्मी के साथ पढ़ते वही वाजिबात मेरे और आपके ऊपर भी, रोज़ा वही है जो मैंने और आपने रखा, रोज़ा वही उन्होंने भी रखा है। इससे फर्क क्यों होता है? हम सब सामने बहुत आसानी से कह सकते हैं उनका रोज़ा कुछ और है हमारा रोज़ा कुछ और है। हमारे और उनके रोज़े में फर्क क्या है? अभी मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें। हम क्या रोज़ा रखते हैं? हम भूख और प्यास का रोज़ा रखते हैं, पानी नहीं पीएंगे, खाना नहीं खाएंगे, वाजिबात को अंजाम दे देंगे, मामला खत्म हो गया। वो भी इतना ही रोज़ा रखते हैं, वो कैसा रोज़ा रखते हैं? तो हम कहते हैं हाँ जन्नत में जिस तरह दर्जे होते हैं ये दर्जात मुख्तलिफ आमाल के मुख्तलिफ दर्जात की बुनियाद पर होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो अमल के ज़ाहिर को अंजाम देते हैं, वो जन्नत के एक दर्जे में पहुँच जाएंगे मिसाल के तौर पर। कुछ लोग होते हैं वो उस इबादत के फ़लसफ़े तक पहुँच जाते हैं, हिकमत तक पहुँच जाते हैं। मसलन जैसे अर्ज हुआ था एक दफ़ा अपनी खिदमत में शायद बहुत पहले, वो ये कि जब आप कहते हैं तकबीर आपने हाथ उठाया अल्लाह के सामने इस बात का ऐलान है खुदा मैं तेरा बंदा हूँ, हिकमत तक पहुँच गए। क़याम किया आपने खुदा मुताल के सामने ऐसे खड़े हैं जैसे बंदा अपने मौला के सामने खड़ा होता है। रुकू किया सर झुकाया है कि सोच के झुकाया है कि खुदा मैं तेरे राम में गर्दन कटाने को तैयार हूँ, मेरी ज़िंदगी तेरे लिए। कहा आपने समय अल्लाह लिमन हमीदा, खुदा हम करने वालों की सुनेगा, आपने खुदा मैं हम कर रहा हूँ। फिर आप सजदे में गए खुदा मुताल से, खुदा मैं तेरा ज़लील अकीर तेरी मखलूक हूँ, अपनी पेशानी को मिट्टी पर रखता हूँ तेरे सामने। उठे आपने कहा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व तूब इलैह, सारी ज़िंदगी मैंने गुनाहगारी में गुजार दी खुदा माफ़ कर दे, मैं फिर तेरे हुज़ूर गिरता हूँ। फिर गिरे उठे उसके बाद आपने कहा बिहाउलिल्लाह व कुव्वतिही अक़ूमु व अक़ूम, ऐ खुदा दुनिया में जो कुछ करता हूँ सब तेरी दी हुई ताकत से करता हूँ। आप हिकमत तक पहुँचना शुरू हो जाते हैं। बस पहला था आपने और हमने जिस्म से अमल अंजाम दिया, ज़बान से अल्फाज कहे, दूसरे मरहले में हम फिक्र से उसकी हिकमत तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। काश कोई तीसरा मरहला नसीब हो जब हम इन आमाल की हकीकतों को भी दर्द करने लगते हैं। रुकू में जाते हैं तो इंसानी वजूद के कमाल के उस मरहले को देखना शुरू कर देते हैं जो रुकू वालों को मिलना है। सजदे में जाते हैं तो इंसानी वजूद के उस कमाल को देखना शुरू कर देते हैं जो साजदीन को मिलना है। ये कहीं और की बात हो जाएगी, कम से कम दूसरे वाले तक तो पहुंचे। अगर दूसरे वाले तक भी पहुंचे यहां से हमारी मानवीयत शुरू हो जाएगी। जब तक लफ्ज के ऊपर हैं, जिस्म के ऊपर हैं, ज्यादा से ज्यादा ये होगा जहन्नम की आग से बचेंगे, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। जब आप और मैं हिकमतों में दाखिल होंगे वहां मानवियात बढ़ना शुरू होंगे, वहां हमारी और आपकी आंखें खुलना शुरू हो जाएंगी, वहां और आपके हमारे और आपके कुछ ख्वाब भी बसीरत देना शुरू कर देंगे हमारे आपको। आप यहाँ इस पर मेहनत करें, आप माह बार के रमजान में रोजा रखेंगे, सब रखें, आप माशाल्लाह इबादत को अंजाम दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कर रहे होंगे, आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप सारे काम कर रहे हैं। अब अगला मरहला क्या है, इस नमाज के अंदर थोड़ा सा फिक्र की तरफ भी तवज्जो दे दें। अच्छा, अब आप कहेंगे कि नहीं ये हमसे होता नहीं है, मसलन सामने वाला मुमकिन है कि भाई मैं नमाज मुश्किल से पढ़ लेता हूँ लेकिन नमाज में फिक्र पे कंट्रोल नहीं रहता, फिक्र कहीं से कहीं चलती रहती है, जब फिक्र ही नहीं रहती तो हिकमत पे क्या सोचूंगा, इस वजह से मेरे हाथ से निकल जाता है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें इस तरह से करना होता है कि कोई ये ना सोचे मुझे क्या करना है पता नहीं है, नहीं, काम ऐसा होना चाहिए जिसमें सबको ये पता हो हमें करना क्या है। अब मुमकिन है कोई कल यहाँ पे आया हो जो कह रहा हूँ मैं बहुत गुनाहगार, उसका हल क्या अर्ज हुआ, इस्तग़फ़ार कर, इस्तग़फ़ार का तरीका अर्ज कर दिया। अब आज मुमकिन है कोई ये कहे नमाज तो पढ़ता हूँ तवज्जो नहीं रहती मेरे सामने, इसके लिए मैं क्या करूँ, तो मैं इसको शुरू करता हूँ कि जब हम इस काम को कर लेंगे तो हम फिर रोज़े की हिकमत पर पहुँचेंगे, और इसी के अंदर रोज़े की हिकमत के ऊपर भी बात कर लेते हैं। आप रोज़ा रखेंगे जिस्म से, ठीक है, अब आप अगले महीने में सोचें मुझे रोज़ा रखना है हिकमत वाला, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए सोचें हर उज़्व का एक रोज़ा होना चाहिए। आपने ज़बान का रोज़ा रख लिया, नहीं अभी आपने सिर्फ शिकम का रोज़ा रखा, ज़बान का भी रोज़ा है। ज़बान का रोज़ा क्या है, कम अज़ कम इससे कोई झूठ सादिर ना हो, इससे कोई गीबत ना हो, इससे कोई हसद ना हो, कोई झूला ऐसा ना निकले। उसके बाद और क्या हो सकता है, इससे अलग भी हो सकता है, वो क्या, आपकी जबान कोई बात ऐसी ना कहे जिसका कोई फायदा नहीं था, क्यों कहे, रोजा रखे। अच्छा, अगर आपने ये करना शुरू कर दिया अब आप मानवियात के अंदर दाखिल हो। बस एक बात तय करने हम और आप बहुत सोचते हैं, भाई आप बहजत का नाम सुना है, इनकी इबादत ऐसी थी, इनकी इबादत वैसी थी, पता नहीं किसी का नाम सुना है कि वो तो कहाँ कहाँ से इल्म हासिल कर लेता था और उसके साथ ये वाक़यात पेश आए, वो वाक़यात पेश आए। हम और आप अपने आप को देखते हैं, हम हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं कुछ हुआ, क्या ये तय है कि वो पैदा बहजत थे और हम पैदा मसला ऐसे ही हैं, नहीं, सबने मेहनत की है, उन्होंने क्या मेहनत की है जो हम नहीं कर रहे। मुमकिन है आप कहें भाई उनका तो मामला शहर का है, वो कुम में रहने वाले थे, बुनियादी तौर पर कुम के रहने वाले भी नहीं थे, बहुत दूर के रहने वाले थे, फूमेल नाम करके एक इलाका था उसके रहने वाले, गीना में, कोई ऐसा ऐसी वजह नहीं है कि कोई कुम में पैदा होगा नजफ में पैदा होगा तो वो ऐसा बनेगा, नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत कहाँ से शुरू होती है, तवज्जो देगा, क्या तवज्जो दें, ये जो मैं अभी आपकी खिदमत में सब अपनी नमाज पर तवज्जो दें, अपने रोजे की तवज्जो दें, आहिस्ता आहिस्ता इनको बेहतर बनाएं। बात वहां से शुरू हुई थी, मेरी नमाज में तवज्जो नहीं हो पाती तो मैं क्या करूं, दो नमाजों के दरमियान गुनाह कम करें, नमाज में तवज्जो बढ़ जाएगी, सादा समझता हूं, दो नमाजों के दरमियान गुनाह कम करें तो आपकी नमाज में तवज्जो बढ़ जाएगी। मैं आपको गारंटी सर्च कर रहा हूँ, आप मसलन किसी दिन बहुत अच्छी नमाज पढ़ना चाहते हैं, इतना सा कर लें जोहर असर पढ़ने से लेकर मगरिब तक अपने ऊपर जिद्दोजहद करेंगे गुनाह ना हो, आपकी मगरिब अच्छी हो जाएगी, खुद बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर कोई तजर्बा करना चाहता है तो मिसाल के तौर पर किसी भी अच्छी नमाज के बाद बुरी नमाज से पहले जांचने की कोशिश करे, मैंने गुनाह कहाँ किया, आपने एक नमाज अच्छी पढ़ी, अगली नमाज अच्छी नहीं हुई, अब आप परेशान है कि पिछली नमाज तो बहुत अच्छी हुई थी, ये नमाज क्यों खराब हो गई, फौरन पीछे जाकर देखिए कोई गुनाह हुआ है, कोई गलती हुई है, कम अज कम गुनाह क्या हुआ है, वक्त जाया किया है, खुदा को वक्त जाया करने वाले पसंद नहीं है, क्यों वक्त जाया किया, खुदा को नहीं चाहता कि वक्त जाया हो। एक इंतहाई नफीस रिवायत है, मैं कोशिश करूँगा इन चंद दिनों में अगर कहीं मुझे उसका उर्दू तर्जुमा मिल जाए तो हम इसको आखिर में कहीं तकसीम भी करवा दें, वरना कुछ और इसका रास्ता निकालेंगे। एक और इसके ऊपर हमने 2 साल पहले या शायद पिछले साल एक अशरा भी पूरा पढ़ा था, बहुत नफीस रिवायत है उनवान बसरी नाम करके। ये वाक्य बहुत अच्छा इंस्पिरेशन देने वाला वाक्य है, मैं इसको आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। और जो जो दोस्त साहब हमारे इंटरनेट वगैरह के ऊपर तकरीरें सुनते हैं उनके बारे भी सुनेंगे, तो वो बाज़ात मुझे उनके एहसास होता है बेचारे बोर होते हैं कि हम एक चीज़ को बार बार दोहराते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ एक जगह दोहराई दूसरी जगह नहीं दोहराई दूसरे और नहीं सुना होगा तो वो भी रह जाएंगे। फिर दूसरा मसला मेरा भी है, मैं नई नई चीज़ें कहाँ से लाऊँगा, तो मैं कुछ पुरानी चीज़ें भी लेके आता हूँ ताकि सुनाऊँ, तो ठीक है मेरा मेरी मुश्किल है। तो इसमें दोनों का फ़ायदा है, वो जो दोबारा सुनने वाला है उसको बेचारे का थोड़ा सा वक्त ज़ाया होता है, तो मैं उनसे पहले से माजरत कर लेता हूँ। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। उनवान बसरी एक बूढ़ा आदमी है, छठे इमाम के ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी ज़ात पर दुरूद भेजेगा मोहम्मद। मदीने में ज़िंदगी गुजारते थे और अहले सुन्नत के 4 फुकहा में से एक के पास रफ्तो आमद काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी उनके पास रफ्तो आमद रहती थी, बूढ़े हो गए थे, मेरे ख्याल में शायद 94 साल उम्र थी मेरे ख्याल में, जो मेरे जहन में आता है मेरे जहन में। कहीं एक दफ़ा इमाम से मुलाकात हुई, इमाम की गर्विदा हो गए और समझ गए कि मुझे इमाम से इल्म हासिल करना चाहिए, बेताब हुए। एक दफ़ा इमाम की खिदमत में पहुँच गए और कहा कि आप मुझे हिदायत दें, आप मुझे अपने इल्म में से कुछ अता फरमाएं। इमाम ने ये तरबियत का एक अंदाज़ है इल्म अखलाक के अंदर, उसके ऊपर बहुत गुफ्तगू हुई है। इमाम ने इस दिन के दिल में विलायत की मोहब्बत को दूसरों के साथ शरीक देखा, उसकी मोहब्बत भी है विलायत भी है, तो मैं ये सही नहीं है। कहा मेरे पास मुझे बहुत इबादतें करनी होती हैं, हाँ शुरू यहाँ से करना है, फरमाया हुकूमत मेरे पीछे लगी हुई है, हुकूमत मेरे पीछे लगी हुई है, इबादतें मुझे बहुत करनी होती हैं, तुम पहले फलाने के पास जाते थे वहीं जाते हो और उसी से हासिल करो। जब इमाम ने जुमलात कहे तो उनवान बसरी समझ गए कि मेरे अंदर कोई गड़बड़ है, वरना ये दर इल्म मुझे क्यों वापस भेज देते, बाबुल खूब पशमान हुए। नबी अकरम के रोज़े में तशरीफ़ ले गए, नमाजें पढ़ीं, नबी अकरम से इस्तेदा की और नबी को वास्ता करार देते हुए खुदा से कहा कि खुदा इमाम का नाम लिया, खुदाया इनके दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे किसी का, ताकि ये अपने इल्म से मुझे भी दें और मैं महरूम ना रह जाऊँ। ये दुआएँ की, फिर दोबारा इमाम के दरवाजे पर गए, खादिम से कहा कि क्या कहो कि मैं आया हूँ, खादिम ने कहा कि इस वक्त मुलाकात का वक्त नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ। आप लोग परेशान होंगे कि इमाम इस तरह कैसे कह सकते हैं, सब तरबियत का उनसर है, सब तरबियत तैयार होना चाहिए आदमी को, पहले समझ में तो आए कि ये जस्तजु कर रहा है, चाहता है या नहीं चाहता है, मुफ्ते की चीज़ नहीं है ये, दौलत देने में अहले बैत कभी नहीं रोकते थे, लेकिन अगर किसी को मानवियत चाहिए थी सर झुकाना पड़ेगा, पहले इतराफ़ करना पड़ेगा कि इसी दर से मिल सकती है और कहीं से नहीं मिल सकती। दौलत में इतराज़ नहीं था, अगर कोई दौलत मांगता है यहाँ भी मांगे वहाँ भी मांगे दोनों जगह से दे देंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर इल्म चाहिए मानवियत चाहिए उसको सर झुकाना पड़ेगा, सिर्फ दर विलायत से मिलेगी। एहसास है कि कुछ हमारे सुनने वाले और हाजरीन की सोचों में शायद ये रिवायत सही ना हो, नहीं मुतमिन रही रिवायत सही है, सोचोगे नहीं इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ऐसी कुछ मुस्तनद तरीन रिवायत में से रिवायत पर वो पहुँचते हैं, कहते हैं कि मुलाकात का कि अभी इमाम की इबादत का वक्त है, मुलाकात का वक्त नहीं है लेकिन मैं पैगाम पहुँचाता हूँ, पैगाम पहुँचाते हैं, उसके बाद वो खादिम बाहर आता है, कहता है आज तेरी बरकत का दिन है, अंदर इमाम ने बुला लिया है, इस तरह का एक जुमला अला बरकत इल्ला, आज तुम्हारी बरकत के लिए है, दिन तुम्हारी बरकत का दिन है, अंदर आओ। वो अंदर आते हैं, इमाम को सलाम करते हैं, इमाम جب سلام کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں, فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاتے ہیں. امام تھوڑی دیر سر جھکائے رہتے ہیں, اس کے بعد سر اٹھاتے ہیں, اس کے بعد فرماتے ہیں کنیت کیا ہے تمہاری. عربی میں پوچھتے ہیں ابو من, یہ عربی میں کنیا استعمال کرتے ہیں, فلاں کا باپ, فلاں کا باپ کہتے ہیں. عمان بس ہی کہتے ہیں ان کی کنیت بھی ابو عبداللہ تھی, خود امام کی کنیت بھی ابو عبداللہ تھی. فرماتے ہیں امام کے خدا تمہاری کنیت کو تمہارے لیے ثابت کرے, یعنی تمہاری کنیت ہے اللہ کا بندہ, تو خدا تمہیں اللہ کا بندہ بنا دے. تو عمان بصری اپنی روایت میں لکھتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ اگر آج کچھ نہ ملے یہی دعا ملے تو یہ بھی بہت ہے, کچھ نہ ملے یہی دعا ملے تو یہ بھی بہت ہے کہ امام میرے لیے دعا کر دی. اس کے بعد امام نے پوچھا ماں مسئلہ تو سوال کیا ہے, تو انہوں نے امام کے سامنے بالکل صاف صاف کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ آپ کے دل میں میری محبت ڈالیں, اور میں چاہتا ہوں آپ کے علم سے استفادہ کروں اور آپ مجھے ہدایت کے راستے پر لے کر چلیں. بہت نفیس روایت. امام فرمایا بصری علم سیکھنے سے نہیں, علم وہ نور ہے جو خدا جس کے دل میں چاہتا ہے نازل کر دیتا. جب تک تم یہ سوچو گے کہ کچھ تمہارا ہے, اس وقت تک بندے نہیں بن سکتے. یہ سوچو کہ تمہارا کچھ نہیں ہے, اس وقت بندے بنو, اس وقت بندے بنو. امام نے اجمالی نصیحت کی, اس کے بعد نو نصیحتیں فرمائیں. جب اجمالی نصیحت کی تو ان کا دل اور بیتاب ہوا, اور امام سے کہا مولا مجھے کچھ نصیحت کر. امام نے نو نصیحتیں کی. یہ پوری روایت عنوان حدیث بصری, حدیث عنوان بصری بنتی ہے. اس روایت کو کہیں نہ کہیں پڑھیں. میرا خیال ہے اردو میں میزان الحکمہ کتاب کے اندر یہ روایت ہونی چاہیے, اور بہت ساری جگہوں پر بھی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مانگا ہے تو ملا ہے. مجھے ڈر یہ ہے ہم لوگ مانگ بھی نہیں رہے, مانگ بھی نہیں رہے, یعنی ہم اسی بھوک اور پیاس کے اوپر رکے ہوئے ہیں. مانگتے کیوں نہیں, مانگتے کیوں نہیں کہ ہمیں بھی معنویت ملے, مانگتے کیوں نہیں کہ ہم بھی آگے بڑھیں, ہم لوگ کیوں رکے رہے ہیں. طلب کریں, ان کو دیکھیں کس طرح طلب کیا انہوں نے. اللہ کے نبی کے روزے پر کے خدا سے استدعا کی, خدا ان کے دل میں میری محبت ڈال دے, میرے لیے راستے کھولے. آپ اور میں بھی یہی کام کر سکتے ہیں. خدا تعالیٰ سے طلب کریں ماہ مبارک رمضان کے اندر, خدا ہم نے ترقی نہیں کی ہے, ایسا ہم بغیر ترقی کیے مر جائیں تو ہمارے لیے راستے کھولتے. اور طریقہ کار میں آپ کی خدمت میں عرض کریں, اپنی عبادتوں کے اوپر توجہ دینا شروع کریں, حکمتوں کو بانٹنا شروع کریں. ماہ مبارک رمضان میں آپ روزہ رکھ رہے ہیں, حکمتوں کے ساتھ رکھیں. نماز پڑھنا ہے, حکمت کے ساتھ پڑھنا. ایک ایک چیز کے اوپر غور کرنا شروع کر دیجیے. اب ممکن ہے آپ کے ہماری زندگی کے اندر مصروفیتیں بہت زیادہ ہیں, چلیے فرض کیجیے مصروفیتیں زیادہ ہیں, کم سے کم ذہن کے گوشے میں تو سوچ سکتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کے بندے کو کیسا ہونا چاہیے. جس وقت نماز پڑھ رہے ہیں کم سے کم اس میں تو سوچ لیں کہ مجھے نماز میں کیسا ہونا چاہیے, یہیں سے آپ کی بے اصطلاح ترقی کے راستے کھلنا شروع ہو جائیں. اور پھر اگر آپ یہ سوچیں کہ ہم لوگ اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں, سید الشہداء کا ذکر کرنے والے ہیں, پھر ہمیں نہ ملے, بہت بڑی بد نصیبی ہے. اور الحمدللہ سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں, سید الشہداء کی محبت آپ کے دل کے اندر, ان کی یاد میں آپ نے زندگی بھر گریہ کیا. اگر ہمیں اور آپ کو معنویت نہیں ملی, محرومیت نہیں ہے, اس معنویت تک پہنچنا چاہیے, اس کوشش کرتے رہیے. ماہ مبارک رمضان سے استفادہ کیجیے. آج جو ایک پوائنٹ اضافہ ہوگا آپ کی خدمت میں وہ یہ کہ کم سے کم کچھ نہ کچھ مطالعہ کیجیے, کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیے. ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں کے ترجمے کے اوپر غور کیجیے گا, ان ترجموں پر دعاؤں کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. مثلا اس میں لکھا خدا ہے میرے ذریعے دین کی نصرت فرما, اپنے آپ سے سوال کریں میرے ذریعے دین کی کیا نصرت ہو رہی ہے, میں دین کی کیا نصرت کر رہا ہوں. عملاً سوال کریں اپنے آپ سے میں نے دین کی کیا نصرت کی اب تک, دین کے نام پہ کیا کچھ خرچ کیا, دین کے نام پہ کیا زندگی کا حصہ دیا, کیا قربانی دی میں نے دین کے نام پر. اپنے آپ سے سوال کرتے رہیں, اس طرح محنت کرتے رہیں گے, من جدہ وجد, جو کوشش کرے گا وہ پا لے گا. خدا متعالیٰ عادل ہے, آپ کی کوششوں کو ضائع تو نہیں جانے دے گا. بس کوشش کی, इंतजाम के ऊपर गौर कर लीजिए। मैं प्रिसाइसली बोलता हूँ इसलिए कई ऐसा बात में ज़्यादा हो जाए। दुआ इफ्तिताह को गौर कर लीजिए, दुआ इफ्तिताह आज कल परसों दो तीन दिन लगा आपने चूँकि दुआ पढ़ी है आप गौर करने लगेंगे तो स्पीड आपकी कम रहेगी। इससे दो तीन दिन लगाएं लेकिन दुआ इफ्तिताह पढ़ लीजिए, इसके जुमला को गौर कीजिए, सोचिए मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर। हम कोशिश करते हैं कल दुआ इफ्तिताह से कुछ हासिल करें। जब आप ये सब काम करना शुरू करेंगे ना आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद कामयाब हो जाएगी। एक आखिरी जुमला और अर्ज़ कर लूँ, सोच के आते कि जुमला बोलूँगा। एक रिवायत है, नफीस रिवायत है, मुझे एक रिवायत बहुत नफीस रिवायत है। फ़लाँ मतलब एक हदीस कुदसी में गोया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, फरमाया अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिह, फरमाया रोज़ा मेरे लिए रोज़े की जज़ा मैं खुद दूँगा, रोज़ा मेरे लिए। आप रोज़े जैसी इबादत को अंजाम दे रहे हैं। उलमा ने इस पर गुफ्तगू की, रोज़ा मेरे लिए मतलब क्या, सारी इबादतें खुदा के लिए, नमाज भी तो खुदा के लिए, हज भी तो खुदा के लिए। तो उन्होंने एक फ़र्क ये दिया है कि तमाम दुनिया की दूसरी इबादत के अंदर जो गैर खुदाई निज़ाम से आती हैं, बुत परस्ती से आती हैं, कभी बुत परस्तों ने रोज़े नहीं रखे, किसी बुत के लिए रोज़ा नहीं रखा गया, रोज़े सिर्फ खुदा के लिए रखे गए। आप एक ऐसी इबादत कर रहे हैं, एक ऐसी इबादत कर रहे हैं जिसको खुदा ने मुताल कहता है कि मैंने तमाम बंदों के ऊपर वाजिब किया है। कुतिबा अलैहिम अस्सलाम कमा कुतिबा अलल लदीन मिन क़ब्लिहिम, ये एक ऐसी इबादत है, यानी एक ऐसी इबादत है जिसमें खुदा कहता है इसकी मसलहत ऐसी है मैं अपने किसी बंदे को महरूम नहीं करना चाहता। आप एक ऐसी इबादत से गुजर रहे हैं, आप इसमें पता नहीं क्या कुछ कर सकते, पता नहीं क्या कुछ अंजाम पा सकता है। जिसमें कुछ इशारे में आपकी खिदमत में करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कोशिश करेंगे तो होगा, कल और अर्ज़ करने की कोशिश करूँ और तवस्सुल करें अहले बैत अलैहिस्सलाम से, तवस्सुल करें अहले बैत के हाथ में सब कुछ, जिसको चाहेंगे नमाज देंगे, जिसको चाहेंगे कबूल करेंगे, जिसको चाहेंगे रद्द करेंगे, जो इन तक पहुँचेगा कामयाबी हासिल करेगा, जो जो दूर हो जाएगा वो नाकाम हो जाएगा। मन आता हम नजा वो मन लम या तुम हलक, जो आप तक पहुँचेगा वो कामयाब होगा। और आप अलहम्दुलिल्लाह से सौदा के चाहने वाले हैं, अपने गिरियों में सैयद सौदा से दरख्वास्त कर रहे, अपने गिरियों में एहसास कर रहे, हर रोज एक ज्यारत सैयद सौदा की जरूर करें। आप पूरी दुनिया की कुफ्र से लड़ने की ताकत अपने अंदर ले आएंगे अगर आप सैयद सौदा के ढंग से ज्यारत कर रहे, पूरी दुनिया की कुफ्र को आप शिकस्त देते हैं अगर आप में सैयद सौदा की ज्यादा तरीके से करें। तो करें सैयद सौदा से। अब ये माह मुबारक रमज़ान, कल भी मैंने अपनी खिदमत में अर्ज़ किया था अगर आज नहीं कर पाए कल कोशिश करें, इफ्तार से 15-20 मिनट पहले नहीं बैठ जाए, सैयद सौदा की प्यास हो जाता है, क्योंकि प्यास का तस्करा करें। आपका खुद का गला खुश हो उस मौके पर कह रहे हैं आपकी प्यास ज्यादा थी, आप गला खुश हो, आपको अगर किसी जगह तक पहुंचना है सैयद सौदा के जरिए हर जगह पहुंचा जा सकता है। सैयद सौदा से तवस्सुल करते रहे, उस प्यास के आलम में अपने जहन के अंदर सोचेगा कि नहीं मालूम क्या हालत थी कि सैयद शहदा ने अली असगर को हाथों में बुलंद किया। सैयद शहदा ने अपनी बाज मुसीबतों को याद दिलवाया है, तलब किया है हम लोगों से मेरी इस मुसीबत को याद करो। 11 मुहर्रम को जब बीबी सकीना सैयद शहदा के अर्शे अक्दस तक पहुंची, उस बेसर के लाशे ने पुकार कर कहा इलैया इलैया या बुनैया, और बीबी ज़ैनब ने पूछा बीबी कैसे यहाँ तक पहुंची, तो फरमाने लाशे ने मुझसे कहा था इधर आओ और एक पैगाम दिया है मेरे शियों को कह दो। सैयद शहदा कह रहे हैं मेरे शियो, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे मानने वालों, तुम समझ जाओ और याद रखना मेरा शीर खान प्यासा था, मैं उसको हाथों में उठा के लाया, नहीं मालूम ये मुसीबत कितनी बड़ी मुसीबत है कि जिसको सैयद शहदा का बेसर का लाशा याद दिला रहा है।
कि हमारे मैं असर को हाथों पर उठा के लाया वो तीरे से दम चला अब मैं यहाँ पर एक तस्करा करता चलूं।
हम लोग उर्दू में कहते हैं तीरे से दम चला, अली असगर का गला छिदा, अली असगर का गला छिदा। अरबी में ये नहीं लिखा, अरबी में जुमला तो लिखा मैं आपकी गद्दा में अर्ज करूं, अरबी में लिखा है तीर चला और कान से कान तक से भाग कर दिया।
السلام علیکم